कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। अभी मुझे बताइए कौन सी कहानी बताना बाकी है। यस, कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ की कहानी नहीं सुनी। सिंपल, गुलाल कुंड और किल्लोड़ कुंड की कहानी मुझे ही पता नहीं है। चंद्र सरोवर, यस। और पेठा की कहानी सुन ली। हाँ, पेठा खा के हो गया। अच्छा, गुड। ओके, कोई बात नहीं। गुलाल कुंड और गांठोली ये एक ही है। गांठोली गांव का नाम है, गुलाल कुंड का नाम है। बहुत सुंदर स्थान है वो, और ब्रज के दीर्घ परिक्रमा में आता है। ब्रज की दीर्घ परिक्रमा जो है वो 40 किलोमीटर की होती है। जो हम लोग गौड़िया करते हैं वो 22 से 24 किलोमीटर की है। और एक छोटी परिक्रमा करके वहाँ पर बोर्ड लगाया, देखा होगा आपने, छोटी परिक्रमा। वो राधा कुंड से दान घाटी से घूम के वापस बाजार से उद्धव कुंड की तरफ जाते हैं। वो आदि है 3.5 कोस की। श्री सनातन गोस्वामी वो 40 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे, जो मैंने आपको सुबह बताया। आज अपने उम्र की 70 साल तक वो करते रहे। माता जी, यू कम फॉरवर्ड और कम दिस साइड। यस। सो ये जो नित्य नियम होता है ना, वो बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य के लिए नित्य नियम बताए गए हैं, और किसी पशु के लिए, पक्षी के लिए, कीटक के लिए, किसी भी योनि के लिए ये नित्य नियम नहीं बताया है। नित्य साधना, नित्य नियम, मर्यादा, ये सब मनुष्य के लिए है। और कोई भी मनुष्य अगर कोई भी नित्य नियम के बिना है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। शास्त्र में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्यतर है। और कोई भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, पंछी हो सकता है। क्योंकि जब हम उनके जीवन जैसा व्यवहार करते हैं तो अगले जन्म में वही बन जाते हैं। मांसाहार करते तो अगले जन्म में मांसाहारी प्राणी बन जाते हैं। ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है कि सारी मर्यादाएं, सारा मार्गदर्शन, सारे शास्त्र, सारा सत्संग वो मनुष्य के लिए है। तो सनातन गोस्वामी ने हमको ये बताया इस कथा के माध्यम से कि 70 साल के बाद स्वयं उन्हें भगवान भी आके बता रहे हैं कि भाई आप बंद कर सकते हैं इसको, अपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सिद्ध हो गए हैं। तो सिद्ध हो या साधक हो, दोनों के लिए साधना बहुत आवश्यक है। साधना करने वाला सिद्ध होने के लिए साधना करता है, और सिद्ध हुआ व्यक्ति लोगों के आदर्श के लिए साधना करते रहता है। क्योंकि सिद्ध हुआ व्यक्ति साधना छोड़ देगा तो बाकी लोग भी उसका अनुकरण करेंगे, छोड़ देंगे। ये बहुत सुंदर बात है। मैंने एक बार बरसाने में जो भी हमारे परिचारक परिवार, मित्र परिवार है उधर, यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ महाराज भी रहे थे, मेरे विचार से और मेरे अनुभव से वो सब लोग शुद्ध भक्त हैं भगवान के। चाहे वह गृहस्थी में हो, चाहे कुछ लोग विरक्त हैं, कुछ गृहस्थी हैं, वो सब लोग परफेक्ट लिविंग बींग्स आते। और उनकी जो मैया थी बहुत वृद्ध अवस्था में थी, वो भी बहुत ऊंची वैष्णवी थी, बहुत ऊंची। क्योंकि वैष्णवों को ऊंचे वैष्णव है कि नहीं है कैसे पता चलता है? उनके व्यवहार से पता चलता है, उनके आचरण से पता चलता है। कैसे वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी सेवा करते हैं। तो वो मैया तो हमारे आई कैंप में रात को 12 बजे तक जगती थी और सबको दूध देती थी, सबको कंबल देती थी। अब बड़ा पानी का भगोना जो है वो चूल्हे पर रखती थी और आधा गर्म करती थी उसको, क्योंकि इतनी भयंकर ठंड हुआ करती थी, 2-3 टेम्परेचर हुआ करता था, तो पानी बर्फ जैसा होता था, तो एक साथ में उबलता नहीं था। तो रात को उसको थोड़ा उबाल के छोड़ते थे और वो मैया फिर स्वयं 3 बजे उठती थी और फिर चूल्हा जलाती थी, और खड़े रह के वहाँ पर दूसरों से पानी डलवाना और इनको पानी देना वो सब काम करती थी, और दिन भर फिर भोजन बनाना, हमारे आई कैम्प के लोगों को खिलाना, उनकी देखभाल करना, दिन भर लगी रहती थी। कभी चेहरे पे कोई नाराज़गी या थकान या ऐसे, क्यों भी इतना दिन से कर रहे। 70 लोग उनके घर में निवास में थे, 70 लोग। आपने जहाँ कुछ आई कैम्प में लोग थे ना, जहाँ प्रसाद पाया ना आपने, वो घर है वो, वहाँ पर 70 लोग हम लोग रहे थे उनके घर पे। मेरा ऑफिस भी उसके अंदर ही था, और मैं टाइफाइड से बीमार था तो मेरी कितनी देखभाल करते थे वो। उसमें टाइफाइड हुआ था मुझे, आई कैंप में भी था मैं, तो सारे आई कैंप की शुरुआत ही टाइफाइड बुखार से हुई है। तो वो माता जी को मैंने इतने निकट से देखा है, तो मेरे विचार से वो शुद्ध भक्त के अलावा कुछ नहीं हो सकती। और उनका देहांत होने का समय आया, उनको बहुत भयंकर बीमारी हुई थी, बहुत भयंकर कष्ट सहा उन्होंने, लेकिन कभी भी भगवान नाम नहीं छोड़ा। मृत्यु शैया पर थी कि सारा चर्म जो है ना सब निकल गया था, शी हैड एक्सपोलेटिव डर्मेटाइटिस, सारा चर्म निकल गया था पूरा, उन एक्सपोज टू सन, उसको बहुत ठंड लगती थी, उसको दिन भर धूप में रखते थे उसको, बहुत कष्ट पाया, कभी भी कभी नाराजगी, कभी भगवान से शिकायत, कभी कुछ नहीं हुआ। अंतिम समय पे कुछ दिन पहले उन गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज और मैं, वो 2 जनवरी का दिन था, साल मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये कितने दिन से उठ नहीं पा रही थी, ऐसे शक्ति नहीं है उठने के लिए, वो धाड़ करके उठ के बैठ गई महाराज को देखते, और बहुत सुंदर उनका वार्तालाप हुआ, उसका मैं साक्षी था। और उनके जहाँ बिस्तर था उनके सामने वो राधा गोपीनाथ का कैलेंडर था, उस फोटो में राधानाथ महाराज ने स्वयं राधा गोपीनाथ का श्रृंगार किया था, वो कैलेंडर बनाया गया था, वो कैलेंडर उनकी आंखों के सामने उन्हें स्वयं रखा था, काट के तारीख काट के वो रखा था, वो उसको ही देखते रहते थे हमेशा। फिर हम लोग मिले और 2-3 दिन के बाद में उनका मृत्यु का समय आया, तो रमेश बाबा जी महाराज ऊपर से मान मंदिर से नीचे आए, उन्होंने कहा बाबा के चरणों का चरणामृत चाहिए मुझे। बाबा भी बहुत गंभीर हो गए, अरे क्योंकि बाबा जो है ना वो जन्म से ब्रजवासी नहीं है, तो अपने आप को इनसे बहुत ऐसे मानते हैं कि ये लोग बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, वंदनीय पूजनीय लोग हैं, लेकिन इसमें से ही कोई श्रेष्ठ वैष्णवी ब्रजवासी कह रही कि मुझे आपके चरणों का चरणामृत चाहिए। बाबा ने बहुत गंभीर होकर प्रार्थना की और अपना पैर आगे किया, उनका पैर किसी ने धोया और वो जल जो है उनके मुँह में दिया। बाबा इतने बड़े विरक्त सन्यासी है, उन्होंने उस मैया का शीश जो है वो अपने गोद में लिया, बहुत देर तक प्रार्थना किया उन्होंने राधा रानी से, अच्छा कीर्तन हुआ, लेकिन बाबा के गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा। कैसे महान वैष्णवी थी वो। तो फिर घर में सूतक लग गया, फिर 12 दिन का सूतक था, फिर वो श्राद्ध किया उनका, तो मुझे प्रश्न पड़ा, अरे श्राद्ध तो उनका करना पड़ता है जो दोबारा आने वाले लोग हैं, ताकि उनको इधर अच्छी गति प्राप्त हो, है ना, नीचे नहीं चले जाए, थोड़ा सा जाना है तो ऊपर की दिशा में जाए, वहाँ से फिर तो ऊपर की दिशा में जाने के लिए वो श्राद्ध होता है, जो मुक्त हो जाते हैं उनके लिए। मुझे ऐसा लगता था कि श्राद्ध नहीं होना चाहिए, जरूरत क्या है, बिना किसी क्रिया से कर्म से कर्मकांड से सीधे भगवतधाम पहुँचेंगे, लेकिन उनका उनके जो पुत्र हैं वो अभी मेरे ख्याल से 80 साल के हो गए हैं, पंडित जी रामजीलाल शर्मा, बहुत बड़े भागवतकार हैं, निस्पृह निरपेक्ष, तो वो भी स्वयं सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने उनका श्राद्ध किया ज्येष्ठ पुत्र के रूप में। तो मुझे ऐसा प्रश्न हुआ, अरे मैया का श्राद्ध करने की जरूरत क्या थी, तो मैंने सीधे रमेश बाबा से ही पूछा कि बाबा मुझे एक प्रश्न पड़ रहा है कि मैया इतनी शुद्ध वैष्णवी ब्रजवासी थी, उसका बरसाने में इतना दिव्य तरीके से देहांत हुआ है, अंतिम समय तक जागृत थी वो, बाबा के चरणों की चरणामृत मांगने तक उसकी चेतना सतर्क थी, तो भगवत धाम नहीं गए तो कहाँ गई होगी वो, तो श्राद्ध करने की जरूरत क्या है उसकी। मैंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ये भगवत गीता में तीसरे अध्याय में 20वां श्लोक से उन्होंने कहा कि आप पढ़ो, 20वां से 25वां श्लोक पढ़ो, कि जो लोग महान वैष्णव होते हैं वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि उनको देखकर सामान्य जनता उसका अनुकरण करे। अगर पंडित जी महाराज ने अगर मेरी मैया शुद्ध भक्त है करके उसका श्राद्ध नहीं किया तो पंडित जी के जितने हजारों लाखों अनुयायी है वो सब लोग भी श्राद्ध करना छोड़ देंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए वो करते रहते हैं ताकि उनको ये पता होता है कि हम जो भी करेंगे लोग उसको देख रहे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बात करते हैं, गुस्सा करते हैं नहीं करते हैं, हंसी मजाक करते हैं नहीं करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, वो सब उनको लोग निहारते रहते हैं। तो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रसिद्ध और क्या कहते हैं, संत बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका व्यवहार जरा भी ऐसा मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता है, तुरंत लोग टीका करेंगे उसके ऊपर। संत लोग बड़े सावधानी से रहते हैं, उसमें से एक सावधानी है साधना। तो वही भाव सनातन गोस्वामी का था कि मेरा नियम जो है वो शरीर को त्यागने तक वो चलेगा। सब ने चलाया है, सभी संतों ने चलाया है, गौड़ीय संतों ने चलाया है, निम्बार्क के संतों ने चलाया है, पुष्टि मार्ग के संतों ने चलाया है। तो ये हुई दीर्घ परिक्रमा की बात सनातन गोस्वामी वाली। फिर भगवान ने लीला किया और उनको वो करना बंद किया आदेश देकर, वो दूसरी बात है। आदेश मिलकर, भगवान का आदेश मिला तो कौन उसके सामने फिर मैं साधना करूँगा, ऐसा नहीं। भगवान का आदेश पालन करना भी साधना ही है। तो वो दीर्घ परिक्रमा में ये जैसे हम लोग वो गोविंद कुंड आता है ना, गोविंद कुंड राइट में, गोविंद कुंड संकर्षण कुंड ऐसे यहाँ पे आता है तो वहाँ से रास्ता निकलता है और फिर वैसे घूम के वो पेठा चंद्रसरोवर क्रॉस करके वापस परिक्रमा में आता है। तो उसके उस तरफ डी की तरफ गुलाल कुंड आता है, गांठोली गांव। इतिहास के अनुसार रामचंद्र भगवान का भी वृंदावन धाम से संबंध है कि प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न को ब्रज का राजा बनाया और मथुरा में उन्होंने उनको अपना राजधानी बनाया, लवणासुर को मारा और वहीं अपना राजधानी राज्य बसाया। फिर भरत को भी भगवान राम ने आदेश दिया कि आप भी जाके अपना राज्य बनाओ। तो डीग नाम का जो जगह है उसका नाम है दीर्घपुर, वो दीर्घपुर भरत राजा ने बनाया है, भरत महाराज ने। और शांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ को और लक्ष्मण को और सबको आदेश दिया था कि आप मथुरा, दीर्घपुर, नंदगांव, बरसाना, इसको पहले बसाओ। तो रामायण काल से बसे हुए नगर है ये सब। तो दीर्घपुर के पास में ये गांठोली गांव आता है। ये ऐसा एक ही गांव है जहाँ पर 12 महीने 360 दिन होली चलती है। मैंने 365 दिन क्यों नहीं कहा, 360 दिन क्यों कहा, क्योंकि 365 दिन ये इंग्लिश कैलेंडर है, हिंदू वैदिक कैलेंडर 360 दिन का है, उसमें अधिक मास आता है और बाकी सारे कैलकुलेशन ठीक हो जाते हैं। ये हम सब लोग इतने दिमाग से बिके हुए हैं, सारा चीज़ जो है वो पाश्चिमात्य वेस्टर्न फॉलो करते हैं, हर चीज़ खाना पीना रहना पहनना सब कुछ बोलना उनके जैसा करना चाहते। तो 360 दिन वहाँ पर होली चलती रहती है, कभी भी आप जाओ, किसी महीने जाओ। उसका कारण यह है कि एक बार राधा और कृष्ण वहाँ पर सब सखियों के साथ गए और एक जगह बैठ गए और बैठ के एक दूसरे की नज़रों में देखने लगे प्रेम से, और इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि उनको होश ही नहीं रहा, सब भूल गए कि कौन कौन कहाँ पर है। तो सखियाँ देखती रही लीला, तो पीछे से गई और राधा रानी का जो चुनरी है और कृष्ण का जो उत्तरीय वस्त्र है उसको उन्होंने गांठ लगा दी और सब लोग चुप गए वापस। बहुत देर के बाद में वो लीला समाप्त हुई, बाह्य चेतना में आए और जब उठे तो वो ऐसे खींच गए क्योंकि वो बीच में गांठ लगी थी। वो जब खींच गए तो उनको बहुत संकोच हुआ, जब संकोच हुआ तो सब गोपियां जोर से हंस पड़ी, तो उनको और संकोच हुआ, अरे ये सब लोग देख रहे थे और मुझे हमको गांठ भी बांधी, समझ में नहीं आया। तो जब वो कृष्ण भगवान और राधा रानी अचंभित अवस्था में थे इनको देखकर अचानक सावधान होकर, तो गोपियों ने, सारी गोपियों ने वो गुलाल की कलर पिचकारी बनाई, एक गुलाल होता है ना वो ऐसे ही मलते हाथ से, और गुलाल को पानी में मिलाकर उसका रंग बनाते, तो उन्होंने पिचकारी वगैरह तैयार रखी थी। जैसे ही ये उठे और संकोच में नीचे देखा, सब लोगों ने चारों तरफ से उन पर पिचकारी चलाई, गुलाल की इतनी पिचकारी चलाई, इतनी पिचकारी चलाई कि पूरा गुलाल कुंड बन गया। आप देख रहे हैं कितना विशाल है वो, देखा ना आपने, अंधेरा था लेकिन आपने थोड़ा अंदाज तो किया होगा ना, बहुत विशाल है, बहुत विशाल, कम से कम 2 से 3 एकड़ एरिया में है और लंबा एकर में, वैसा देहात है, बहुत सुंदर ब्रज का वातावरण है। तो ये जो गुलाल कुंड है, ये रंग पंचमी का रंग है लेकिन राधा और कृष्ण का चरणामृत है, क्योंकि उनको पूरा स्नान करा के भिगो के वो जो जल इकट्ठा हुआ उससे बना हुआ कुंड है वो, इसलिए उसका नाम गुलाल कुंड है। तो वो जगह पे जब चैतन्य महाप्रभु आए, प्रभु जी ने आपको बात बताई होगी, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो कृष्ण की खोज में उन्होंने 24 किलोमीटर अंतर की परिक्रमा की, कृष्ण को ढूंढे ढूंढे, और वही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से अलारनाथ 24 किलोमीटर भाग के गए कृष्ण को ढूंढने के लिए। इसलिए हमारे ठाकुर भक्ति सिद्धांत बताते हैं कि पेठा गांव और अलारनाथ ये सेम है, दोनों का भाव सेम है। वहाँ पर भी जगन्नाथ जी द्विभुज हैं, उनको ढूंढने के लिए गए तो चतुर्भुज नारायण नजर आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को चतुर्भुज नारायण नजर नहीं आए, वो 4 भुजा वाले जो अलारनाथ जी हैं उनको 2 भुजा वाले मुरली बजाने वाले दिखाई पड़े, सतत दिखाई पड़े उनको। उसी तरह से यहाँ पर भी जब राधा रानी, यानी चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी का भाव लेकर है ना, तो यहाँ पर भी जब चतुर्भुज बनकर भगवान खड़े हैं और जब राधा रानी आती है तो उनके 4 भुजा शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए, वो शंख चक्र पद्म गदा गायब हो जाते हैं, 2 भुजा भी गायब हो जाती है और 2 भुजा में अपने आप मुरली आती है और वो बजाना आरंभ करते हैं। तो अर्थात क्या हुआ कि राधा रानी के प्रेम के सामने, राधा रानी के प्रेम के सामने भगवान अपना ऐश्वर्य रूप बनाए रखने में असफल रहे। केवल असफल नहीं रहे, वो बेकाबू भी हो गए। उनके मन में तो इच्छा थी कि ऐश्वर्य बनाए रखे चतुर्भुज स्वरूप का, लेकिन उनके नियंत्रण के विरुद्ध उनकी 2 भुजा अपने आप मुरली वाली बनी और वो मुरली बजाने भी लगे, इतना नियंत्रित हो गए वो, स्वयं में अनियंत्रित और दूसरे के द्वारा नियंत्रित। तो ये बात कहां से निकली, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पूरी परिक्रमा लगाई उन्होंने, तो उन्होंने ब्रज परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा की, फिर उन्होंने कुसुम सरोवर में स्नान किया, उन्होंने वहां पर कृष्ण का दर्शन किया तो बेहोश हो गए, सब लीला हुई। उसके बाद में उनको पता चला कि उनके दादा गुरु माधवेंद्रपुरी, उन्होंने यहाँ पर बहुत लीला की, गोपाल जी ने उनको दर्शन दिया, फिर स्वप्न में आए, फिर उन्होंने आदेश दिया, फिर उनके विग्रह को प्रकट किया गया, फिर वो गिरिराज के ऊपर स्थापन किया गया। तो उनको गोपाल जी का दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा हुई, बहुत तीव्र इच्छा हुई। तो वे क्या करें, चैतन्य महाप्रभु ने कभी गिरिराज के ऊपर अपने चरण नहीं रखे, ना हम रखते हैं, बहुत सारे नियम हैं, मैं भी जानबूझ के वहाँ पर नहीं बताया आपको, वहाँ पर एक दंडौती शिला है, डंडोटी शिला का नियम ऐसा है, उसके 7 परिक्रमा करेंगे तो ब्रजवासी लोग उसको करके ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग 7 परिक्रमा करते हैं लेकिन हम ऊपर नहीं जाते हैं। 7 परिक्रमा करने का एक कारण है कि ब्रजवासी उसको करके ऊपर जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और दूसरा लाभ है कि 7 परिक्रमा करेंगे तो आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलता है, बड़ी संख्या में यात्रा में वो करना मुश्किल है, इसलिए हमने आपको वहाँ नहीं भेजा। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत तीव्र इच्छा हुई, ऊपर से बंधन भी है मन में कि जाना नहीं है ऊपर, तो दर्शन कैसे करे कैसे करे, वो तड़पने लगे गोपाल जी के दर्शन के लिए। तो फिर क्या हुआ, गोपाल जी भी स्वयं व्यक्ति है ना, परम भगवान है वो, उनको पता चला भक्त रूप में आए हुए चैतन्य महाप्रभु तड़प रहे हैं दर्शन के लिए, तो उन्होंने अफवाह उठाई जतिपुरा में कि मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो पुजारी तुरंत गोपाल जी को लेके भागे और वो गांठोली गांव में आए। और गांठोली गांव में आए तो चैतन्य महाप्रभु पता चला, अरे ऐसे ऐसे अफवाह आ रही है और गोपाल जी आ रहे हैं। तो वो भागे गांठोली गांव में, और गांठोली गांव में उन्होंने 7 दिन खूब दर्शन किया भगवान का, दिन रात, और दिन रात संकीर्तन किया प्रेम से विभोर होकर। ना सुंदर नृत्य किया, गोपाल जी भी प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए दर्शन करके। 7 दिन उन्होंने पूरा गोपाल जी की सेवा भी की, कीर्तन भी किया, सब गांव वालों को एकदम मदोन्मत्त कर दिया, भाव विभोर कर दिया। 7 दिन के बाद में पता चला कि वो अफवाह थी, इसलिए फिर उनको वापस जाने का कार्यक्रम बनाया गया। तो उस जुलूस का नेतृत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कीर्तन से किया। गांठोली गाँव से देखो कितना दूर है वहाँ से, वो वहाँ से पूरा कीर्तन करते करते परिक्रमा रास्ते से जतिपुरा आकर उन्होंने नीचे तक ठाकुर जी को पहुँचाया, फिर ब्रजवासी ने उसको ऊपर, उनको ऊपर विराजमान किया। तो ये 2 कथाएँ गुलाल कुंड की हैं, गांठोली गांव की। तो हम सबकी गांठ ऐसे ही पड़ी है दुनिया से, बहुत कटरी गांठ है, पता नहीं कितनी गांठें पड़ी है उसकी, और ऐसी गांठें पड़ी है हमारी कि एक गांठ सुलझाने को जाओ तो दूसरी बन जाती है। बस गांठों का भंडार है पूरा, गांठों का पूरा भंडार है ना। जय महाराज आपके लिए, जय श्री राधे श्याम। आप पेठा गांव से आए हैं, सो गांठों की पूरी पूरी पोटली है, एक छोड़ो तो दूसरी बन जाती है, दूसरी छोड़ो तीसरी बन जाती है। तो ये गांठ तोड़नी होगी। जैसे कभी कभी हमारे शिखा में भी बहुत सारी गांठें पड़ जाती है, बहुत प्रयास करते हैं, तेल लगाते हैं, इधर करते, बहुत सारा करते हैं, लेकिन नहीं आती है, फिर हमको वो काटनी पड़ती है, काटने से फिर वो शिखा मुक्त हो जाती है। उसी तरह से अगर इन भौतिक विश्व से पड़े हुए गांठों से हमको मुक्त होना है तो हमको मदन मदन मोहन जी का आश्रय लेना होगा, क्योंकि मदन मोहन जी वो हमारी गांठ को काट देते हैं और अपने चरणों से गांठ बना देते हैं। संबंध संबंध अधिदेव राधा मदन मोहन जी। और ये मदन मोहन जी संबंध कौन करेगा? वो वैष्णव, कोई प्रेमी भक्त, दयालु भक्त जो है वो आपके पीछे पड़ेगा, और पीछे पड़ के पड़ के पड़ के फिर एक बार आपको जोड़ देगा उनके साथ। जैसे हमारे महेश कुचरेकर बैठे ना, फोटो वीडियो कैमरा कर रहे हैं, उनके बड़े भाई ऐसे हमारे पीछे पड़े थे, ने बहुत उनको दुख दिया हमारी उद्दंडता से, लेकिन फिर भी वो आते रहे आते रहे आते रहे। और एक दिन ऐसा दोस्ती का वास्ता दिया, दोस्ती तो है ना, इंटरेस्ट नहीं है चलेगा, दोस्ती तो है ना, दोस्ती तो है, चलो दोस्ती के वास्ते के लिए एक दिन मंदिर आ जाओ। फिर हम गए दोस्ती के वास्ते मंदिर के लिए, और मंदिर में गए, मंगला आरती देखी तो सब कुछ, सब गांठें छूट गई उधर एक ही साथ में, एक ही दिन में। 4 फरवरी 1986 का दिन है वो, कुछ भी नहीं, 1984, 4 फरवरी 1984, इस साल 40 साल पूरे हो गए उस सुदैवी घटना के लिए। उन्होंने संबंध ऐसा बनाया ना, भगवान की कृपा से ऐसा संबंध बनाया, 4 माला का वादा लिया, गले में कंठी माला पहनाई, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये ग्रंथ भी दिया, और हमने बोला कि हम अभी मांसाहार छोड़ देंगे, और बड़ी कृपा रही उनकी। तो संतजन जो होते हैं, वैष्णवजन, तो बहुत सहनशील होते हैं, बहुत लोगों का आतंक सहन करते हैं, उनका नॉनसेंस भी सहन करते हैं, लेकिन ये न के न प्रकार न संबंध बन जाए भगवान का इंसान, उसके लिए कष्ट करते रहते हैं। कुछ भी करो आप, लेकिन भगवान से नाता जोड़ो, ये तो राधा कृष्ण की प्रेम की गांठ है। हम तो पहले अपनी गांठ छूटेगी, दुनिया दुनिया की गांठ, तो ही उनसे गांठ बनेगी ना। तो ये प्रार्थना करो आप कि हमारी उनकी गांठ बढ़े और कभी ना छूटे। कितने भी जन्म लेंगे या मुक्त होंगे या गौलोक धाम जाएंगे, फिर भी ये गांठ नहीं छूटनी चाहिए, हृदय में होनी चाहिए वो गांठ ठाकुर जी से। दूसरी शिक्षा ये है इस गांठोली की कथा में कि अगर आपके मन में, हमारे मन में अगर तीव्र तड़प हो तो ठाकुर जी उसको प्रतिसाद देने में विवश हो जाते हैं। कमी केवल वो तड़प की है, लौल्य, लौल्य यानी क्या कहते हैं उसको, तीव्र इच्छा, पिपासा भी एक शब्द है उसके लिए, पिपासा यानी अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित इच्छा, वो बस में नहीं होता है व्यक्ति के, वो बेबस हो जाता है, विवश हो जाता है उस इच्छा के सामने। वैसी इच्छा जब भगवान के लिए करेंगे, ऐसे व्यक्ति से भगवान एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। आज वो हमसे दूर रह सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी दुनियादारी की इच्छाएं हैं, प्रपंच की इच्छाएं हैं, संसार की इच्छाएं हैं, उनको छोड़कर अलग की हुई इच्छाएं हैं, और उनकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन इनकी इच्छा का बल कम है और दुनिया की इच्छा का बल ज़्यादा है, तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे धीरे धीरे ये कम हो जाता है, ये बढ़ते जाता है, जब ये समाप्त होके वही बचता है और वो बहुत तीव्र हो जाता है, तो ठाकुर जी भी बहुत तड़पते रहते हैं हमारे लिए। सब लोग ध्यान रखना इस बात का कि ठाकुर जी को हमें मिलने की तड़प जो है, हमें उनको मिलने की तड़प से बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि क्यों नहीं मिलते, अभी तो मैं भक्त बन गया, अभी तो मैं जप भी कर रहा हूँ, मैंने दीक्षा भी ले लिया, अभी मैंने ये भी कर लिया, अभी वो भी कर लिया, कुछ लोग कहेंगे संन्यास भी ले लिया, सब कुछ दुनिया छोड़ दिया, कहाँ है ठाकुर जी? वो सब बाह्य परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता है, जब तक हृदय में, रूप गोस्वामी बताते, जब तक हृदय में लौल्य निर्माण नहीं होता भगवान के लिए, तड़प निर्माण नहीं होती है, तब ठाकुर जी भाग के नहीं आते। जब तड़प निर्माण होती है, एक क्षण भी रुकते नहीं, वो उनको रहा नहीं जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि हम जितना सोचते हैं कि हम भगवान के लिए तरस रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक भगवान हमारे लिए तरस रहे हैं। सिंपल सा उदाहरण है, अगर घर से बालक छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के गया, तो माता पिता कभी भूलते नहीं उसको, दिन रात उसका चिंतन करते रहते, कहाँ गया होगा, कहाँ खाता होगा, कभी काका को भेजते, कभी भैया को भेजते, दोस्त को भेजते, देखो क्या कर रहा है। तो मैया बाबा का जो प्रेम है ना, वैसे भगवान का प्रेम होता है। हम कितना भी विद्रोह करेंगे, लेकिन वो कभी भी हमको नहीं भूलते हैं। तो हम उनको छोड़ के आए हैं भौतिक दुनिया में, लेकिन ठाकुर जी हमें कभी नहीं भूलते हैं। संतों को भेजते हैं, हरि नाम को भेजते हैं, और शास्त्रों को भेजते हैं, यहाँ के लीला करते हैं, धाम उत्पन्न करते हैं, तीर्थ स्थान उत्पन्न करते हैं, नदियों को भेजते हैं, क्या नहीं करते हैं, प्रसाद को भेजते हैं, अपने आप को जो अधोक्षज हैं, भगवान का नाम अधोक्षज क्यों है, क्योंकि इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते वो, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है, किसी भी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकते वो। ऐसे इंद्रियों के पकड़ के बाहर होने वाले भगवान इंद्रियों के दायरे में आ जाते हैं विग्रह बन के, ताकि आप दर्शन कर सके, उनको छू सके, उनकी सेवा कर सके, उनका श्रृंगार कर सके। ये ठाकुर जी की दया है, विग्रह जो हम देखते हैं ना सब जगह विग्रह, ये ठाकुर जी जो असीमित, अमर्याद और अकल्पनीय, अचिंत्य है, वो सब देखने लायक, सेवा करने लायक रूप में आ जाते हैं, ताकि अभी तक हम सिद्ध नहीं हुए लेकिन बद्ध अवस्था में भी उनको सेवा कर सकते हैं, इसलिए वो आए हैं। इतना सारा करते हैं वो, और भक्तों को भेजते हैं, जाओ भाई इसको पकड़ो, जाओ उसको पकड़ो, जाओ उसको पकड़ो, और हम लोग नहीं 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 करते, नो नो नो, फिर भी पीछे पीछे आते रहते हैं, अपमान सहन करते हैं, फिर भी आते रहते हैं। इतना सारे क्यों करते कार्य? क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि हम लौट के आए, भूले भटके हुए जीव लौट के आए, उनके बने, इसलिए वो करते प्रयत्न करते रहते। तो महाप्रभु चैतन्य ने वो तड़प दिखाई, तीव्रता, गोपाल जी भी विवश हो गए, उनको अफवाह फैलानी पड़ी, और महाप्रभु को दर्शन दिया। ऐसे शास्त्र में कई कहानियां हैं कैसे ठाकुर जी लीला रचाते हैं अपने भक्त को मिलने के लिए, भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। फिर कहाँ गए आप लोग? उसके बाद चंद्र सरोवर गए। चंद्र सरोवर जो है वो भगवान की रास लीला की स्थली है। भगवान ने जो प्रमुख रास किया, रास लीला, वो भगवान ने पहले रास लीला शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में बंसीवट के इर्द गिर्द किया, यमुना किनारे मुरली बजाई, सब गोपियों को सबसे पहले बुलाया और बीच रात में रास लीला की। उसके बाद में उन्होंने वसंत ऋतु में, ये शरद ऋतु की बात है पहली, दूसरी बात वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में उन्होंने शुरुआत होते ही वसंत पंचमी के दिन फिर उन्होंने मुरली बजाई गोवर्धन में, और गोवर्धन मुरली बजाई, सब गोपियाँ वहाँ पर आई और भगवान ने वहाँ पर रास नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान जब रास करते शुरू करते ना, तो सब पूरे ब्रह्मांड में खबर पहुँच जाती है, सारे देवता लोग आकाश में प्रकट हो गए, सब देख रहे हैं, पूरे ब्रज में भी ये खबर फैल गई। तो बलराम जी भाग भाग के आए, यहाँ पर रासलीला हो रही है और बलराम जी भाग भाग के आए और वो पहाड़ पर चढ़ गए। लेकिन पहाड़ पर बलराम जी खड़े हो गए तो उनको लगा कि मैं देखने लगूंगा तो वो मुझे देखेंगे, और वो देखेंगे तो संकोच होगा, बड़े भाई के सामने नृत्य कैसे कर सकते हैं सखियों के साथ, तो बंद कर देंगे। तो वो झुक गए अपने आप को छुपाने के लिए, देखना भी है और छुपाना भी है, इसलिए झुक गए। और जो नृत्य उन्होंने देखा रासलीला, वो भाविभोर हो गए। अष्ट सात्विक विकार नाम की एक वस्तु होती है, अष्ट सात्विक विकार, नेत्रों से अश्रु आना, कंठ गदगद होना, शरीर के रोमांच खड़े होना, बेहोश हो जाना, रंग बदल जाना, हाँ एकदम सफ़ेद हो जाना, बेहोश हो जाना, असंबद्ध बातें करना, और लास्ट में है मृत्यु। मृत्यु भी है अष्ट विकार में, उसके पहले एक है स्तंभ विकार। स्तंभ विकार यानी हम स्तब्ध हो जाते हैं, सांस भी नहीं चलती है, हाथ पांव सब बंद हो जाते हैं, नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, जैसे सुभद्रा जगन्नाथ और बलदेव जी का हुआ था, है ना, वो एक स्तब्ध विकार में से हो। तो अष्ट विकार पूर्ण है, महाभाव है वो, लेकिन उसमें आंखें भी खुली है ऐसे, तो वैसे हो गए वो, एक तरह से लकड़ी बन गए। तो झुके तभी मुकुट गिर गया उनका, वो मुकुट भी ठाकुर जी को स्पर्श किया हुआ, बड़े भाव में था, क्योंकि ठाकुर जी का मुकुट है ना, वो भी व्यक्ति है, मुकुट के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी के सर शीश को स्पर्श होने के नाते जो भाव ठाकुर जी में, बलराम जी में निर्माण हुआ, वो मुकुट को भी प्राप्त हुआ, और मुकुट भी जैसे ठाकुर जी का गिर गया झुकने के बाद में, तो शिला पे गिर गया, तो शिला भी पिघल गई उस मुकुट का स्पर्श करने से, और वो मुकुट के अंदर शिला घुस गई और वो मुकुट शिला बन गई। बलराम जी वहाँ ढोक दे रहे हैं, ढोक यानी दंडवत पोजिशन में, इसलिए उनका नाम ढोका दाऊ जी पड़ा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अद्भुत चीज़ें हो रही हैं। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ भाव विभोर होकर, और सारे देवता उनको ना म्यूजिक देने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई सुंदर गायक गाता है तो सब लोग बैठ के साथ देना चाहते हैं, कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई कुछ बजाता है, संतूर बजाता है, कोई सतार बजाता है, वीणा बजाता है, तो हम भी कुछ सेवा करें, इनकी इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं। तो जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, उनके पास कौन सी म्यूजिक है पता है आपको? सबसे पहले उनकी संगीत क्या है, उनके पास सबसे पहला संगीत होता है मुरली का। मुरली के संगीत से रास का आरंभ होता है, यानी गोपी आ जाती है। जब रास का आरंभ होता है तो किससे आरंभ होता है, पहले वो घुंघरू बजाते हैं अपने छुम 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 छुम, फिर दूसरे कंगन बजाते हैं, और उससे रास का संगीत निर्माण होता है। फिर उसके बाद फिर गोपियाँ फिर वाद्य भी लेके आते हैं, फिर कभी कभी इतनी भाव विभोर होती है कोई वाद्य लेके नहीं आते, इन्हीं वाद्यों से अपना काम चलाते हैं, लेकिन वो इतना सुंदर स्वर में गाते हैं कि उस सुर को सबसे जो एक्सपर्ट कुशल देवता हैं संगीत में ही है, जन्म लेते ही उनका शरीर है वो संगीतज्ञ शरीर है। जैसे गंधर्व जो है जन्म से ही बेस्ट ऑफ सिंगर रहते हैं, किन्नर जो है वो जन्म से ही बेस्ट ऑफ डांसर होते हैं, और कुछ देवता ऐसे होते हैं जन्म से ही कोई ट्रेनिंग नहीं उनको, जैसे बंदर कैसे जन्म से ही वर्ल्ड चैंपियन एथलीट होता है, कोई भी ओलंपिक चैंपियन उसके सामने आएगा ना तो वो हार जाएगा, इतना जन्म से उसके शरीर बना हुआ है, इतना कैसे भी कर सकता है वो, जो भी कैसे जॉइंट बने उसको पता नहीं। तो वो जन्म जो है देवताओं का वो उस कला में एकदम निपुण रहते हैं, लेकिन वो भी ठाकुर जी के स्वर को जो उन्होंने पायल कंगन और मुरली से निर्माण किया है उसको जोड़ नहीं पा रहे, वो सिंक नहीं हो रहा है, सिंक इंद्र उनमें नीचे आए उतर के और वो शिला बजाने लगे। आपने देखा उस शिला को, उसका नाम है बाजनी शिला, बाजनी शिला वो बजाना, लेकिन उसका कोई ताल कहीं और जा रहा है, वो ठाकुर जी कोई और ताल में नाच रहे हैं, सब लोग गाने का भी प्रयास कर रहे हैं, आलाप भी दे रहे हैं, वो कहीं और अपनी जगह पे चल रहा है, ठाकुर जी का अपनी जगह पे चल रहा है। तो चंद्र देवता ना, अभी देखो क्या हुआ, इतने भाव विभोर होने के बाद में सबसे आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे और सबके शरीर से दिव्य स्वेद निकलने लगा। जैसे जमुना जी जब निर्माण हुई ना गोलोक में तो भी ऐसा ही हुआ था, जब प्रथम रास भगवान ने गोलोक वृंदावन में किया तो भी नेत्र और शरीर से दिव्य जल निकला, इकट्ठा होकर तालाब बना और उसको राधा रानी ने फिर प्रवाहित करके यमुना जी बना दिया गोलोक में। वैसे यहाँ पर भी वो सब सबके नेत्रों से झरझर झर झरते हुए, शरीर से झरते हुए, सब एकत्र होके एक बड़ा पौंड बन गया, तालाब बन गया, सरोवर बन गया, वो बढ़ते जा रहा था। वो चंद्र देवता ना उसको देखकर इतने 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 प्रेरित हो गए कि उन्होंने सोचा कि ये जो तालाब बना हुआ है ना, ये वैसे रहना चाहिए, ये सूख नहीं जाना चाहिए किसी कारण। तो उसने उनके पास में ना समुद्र मंथन में प्राप्त किया हुआ अमृत है जो देवताओं ने उस समय पाया, और बहुत सारा है, वो ऐसा नहीं कि उसमें समाप्त हो गया। वो ब्रह्म देवता ने चंद्र देवता को कहा कि आप उसके अपने कस्टडी में रखिए, आप उसके कस्टोडियन रक्षक। तो अमृत सदैव चंद्र देवता के पास रहता है। तो चंद्र देवता ने भाव विभोर होकर अमृत लाया और कुछ बिंदु डाल दिए उसके अंदर। फिर भी नृत्य चल रहा था, नृत्य चल रहा था, नृत्य चल ही रहा था। आखिर में चंद्र देवता इतने इतने प्रेरित हो गए कि उस कुंड में पिघल गए, चंद्र देवता एक रूप हो गए उससे, इसलिए उसका नाम पड़ा है चंद्र सरोवर। उसमें भी गोपियों को गर्व हुआ क्योंकि भगवान ने वैसे ही सभी गोपियों के सामने एक एक रूप को प्रकट किया। तो कुछ देर बाद देवतागिरी, अभी देखो अभी हम लोग सब अगर नृत्य कर रहे हैं समझो, और हमारे सबके साथ में एक ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तो हमको सबको पता चलेगा ना कि भाई इनके साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो बताइए गोपियों को क्यों नहीं पता चला, उनकी भी आंखें हैं, सब कुछ है उनको, साइड में देखे तो पता चलता ना, सामने भी देख पता चलता था, चारों तरफ गोपियां नाच रही हैं, क्यों नहीं पता चला बताइए? मुग्ध मुग्ध, वो मुग्ध और मग्न थी। मग्न का मतलब है बिल्कुल उसमें फंस जाना, और मुग्ध का मतलब है आनंद अनुभव करना। तो मग्न भी थे और मुग्ध भी थे, इतने भाविभोर, इतने एकाग्र थे कि उन्हें कभी पता नहीं चला कि बाजू में भी कोई गोपी नाच रही है, कोई है विश्व में उनके अलावा। सारा ध्यान, सारी इंद्रिय, सारी चेतना, सारी बुद्धि, सारा मन, सारी भावना श्री कृष्ण में पूर्णता एकाग्र है, इसलिए उनको पता नहीं चला। इसलिए धीरे धीरे लगा कि अरे सबको छोड़कर कहीं अकेले में मुझे संग दे रहे हैं, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, और ये जैसे इनको लग रहा है ऐसे सारी गोपियों को लग रहा है। सभी गोपियों के मन में ये सूक्ष्म अहंकार जागृत हो गया और भगवान फिर अंतर्धान हो गए, अचानक गायब हो गए। तो फिर सब गोपियां बोलने लगी कहाँ गए कहाँ गए, मेरे साथ अकेले में थे। तो सबने कहा मेरे साथ भी थे। तो सबको पता चला करे हम सबके साथ थे लेकिन हम लोगों ने गर्व किया, ठाकुर जी फिर अंतर्धान हो गए। फिर चालू रोना धोना ढूंढना, और भगवान जब भी अनंत बार अंतर्धान हो गए रासलीला से, लेकिन हर बार एक ही काम नहीं करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। इसमें उनको लगा थोड़ा हास प्रयास भी किया जाए, तो वो चतुर्भुज नारायण बन के खड़े हो गए हैं और सब गोपियां पूछते पूछते जा रही हैं। अधिकतर बीच में नारायण दर्शन हुआ चतुर्भुज नारायण का, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, ओम नमो नारायणाय। और भाई हम लोग देखेंगे उनको कभी रास्ते में, तुरंत हम लोग ब्रह्म संहिता पुरुष सूक्त सब श्लोक बोलना शुरू कर देंगे तुरंत, अगर याद आता है तो। मैं तो प्रार्थना तो करेंगे, कम से कम दंडवत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ जो आता है हमको, जो भाषा आती है उसमें करेंगे। नमो नारायणा करके दंडवत प्रणाम करते पहला प्रश्न पूछा, आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? तो नारायण बने हुए जो कृष्ण है ना, वो भी एकदम व्याकुल हो गए, अरे यार क्या करें, अभी मुझे देख रहे हैं, मैं इतना ऐश्वर्य संपन्न रूप धारण करके खड़ा हूं यहाँ पर, क्योंकि विष्णु है, वो विष्णु का ऐश्वर्य तेज प्रकाश वो सब भूल जाएंगे आप विष्णु को देखेंगे तो, और ये मुझे देख रही है फिर भी मुझे पूछ रही है कृष्ण कहाँ है, इतना कृष्ण में उनको लगन है। तो एक हाथ जो कुछ पकड़ा होगा शंकर चक्र बता इधर गए, तो उधर सब गोपियां भागी। विष्णु को ऐसा मतलब एक प्रकार से दुर्लक्ष कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया उनको, और पीछे ना राधा रानी आ रही थी सबके पीछे। और राधा रानी का भाव देखो कैसा था, राधा रानी ना उसके मुंह के सामने एक भवरा मंडरा रहा है, तो वो भाव में क्या सोच रही है कि ये भवरा ही कृष्ण है जो छोड़ के चला गया है, तो भी उसको ताने मार रही है वो। बहुत सारे श्लोक है भागवत में, सुंदर सुंदर श्लोक है, अल्लन शास्त्र में भी है कि तू बहुत क्रूर है, तो ऐसा कपटी प्रेमी है, तुझसे किसी ने प्रेम नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही करता है, तुझे जरा भी लाज नहीं आती कि अपनी प्रियतमा को छोड़कर कभी भी चला जाता है, हृदय भंग करने में थोड़े बड़ा आनंद आता है, ऐसे उसको बोल रही है, ताने मार रही है, उसको कुछ भान नहीं है, वो मंडराने वाले भंवरे से बात कर रही है। और उतने में सामने विष्णु दिखाई पड़ते, नारायण भगवान, तो भंवरे से बातें हो रही है, अचानक ओम नमो नारायणाय नमः, फिर पता चलता कि नारायण को तो सब पता है, सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपवनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यौ वेदांतविद वेद विदेह चाहम, तो सब जानते हैं, सबका सार जानते हैं, सब नॉलेज का उगम यही है, साक्षात नॉलेज भी यही है, और स्मृति विस्मृति सब इनके तरफ से आती है, इनको तो पता ही होगा कृष्ण कहाँ है, तो तुरंत उनको पूछा, ऐसे भाव से पूछा ना कि कृष्ण भगवान को अपने चार भुजाएं मेंटेन करना मुश्किल हो गया, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन एक बात हुई उसमें, जैसे विष्णु प्रकट हुए नारायण भगवान, तो उनके एक सुंदर कमल निर्माण हो गया, दिव्य कमल, तो समय सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं, उनके चरणों के नीचे प्रकट हो गया, और त्वरित वहां पर चारों तरफ क्षीर सागर प्रकट हो गया, क्योंकि वह क्षीर सागर के विष्णु बनकर वहां पर प्रकट हुए थे। तो इस लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने क्षीर सागर को ब्रज में आश्रय दिया, क्षीर सागर को जो लालायित है ब्रज में शरण लेने के लिए, उनको ठाकुर जी ने आश्रय दिया। और भी बहुत जगह है जहां पर क्षीर सागर ने आश्रय लिया है, एक जगह है दाऊ जी जो दक्षिण कोने में है, बलदेव दाऊ जी, वहां पर 100,000 गायों का दूध निकालकर नंद बाबा ने बलराम जी का अभिषेक किया था, तो वहां पर भी क्षीर सागर प्रकट हो गया है। राधा कुंड श्याम कुंड में भी क्षीर सागर उपस्थित है, वो सब देवताएं आए ना, तो राधा रानी बोल रहे हैं किधर है सब, तो सब आके परिचय देते, उसमें एक था मैं क्षीर सागर हूं, तो क्षीर सागर भी वहां पर राधा कुंड श्याम कुंड में है। फिर विमल कुंड का निर्माण किया, उधर भी सारे तीर्थ प्रकट हुए, उसमें भी क्षीर सागर है। राधा कुंड के जन्म के आविर्भाव के समय पे, जब राधा कुंड का आविर्भाव होता है रात को बीच में 12 बजे होता है, उस समय वो क्षीर सागर जो है ना, वो आनंद से विभोर होकर अपने आप को प्रकट कर देते हैं, वो सब जगह राधा कुंड में दूत दिखाई पड़ता है, और उस समय सारे ब्रजवासी अपनी थैली कपड़े विपड़े पहन के उस पर छलांग लगाते हैं उस समय को पकड़ने के लिए, शाम से लेकर वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही वो दूध के ऐसे बहुत सारे हजारों ऐसे दूध निकलते हैं, तो क्षीर सागर का जो हिस्सा है उसमें वो एक्टिवेट हो जाता है। और भी क्षीर सागर होता है एक्टिवेट, कहाँ पर, त्रिवेणी कूप भी भर भर के बाहर आता है, और वहाँ पर एक वेणुकूप है जो वत्सासुर के वध के बाद में भगवान ने बनाया था, उससे भी उसको भी भर्ती आती है ऐसे समय पर, तो पूरा ब्रज चमत्कारिक है। तो वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, वो क्षीर सागर है, इसलिए उसका नाम क्षीर सागर कुंड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखे होते, पता नहीं लाइट था कि नहीं, वो मंदिर जो है ना, वो कमल है जिसमें विष्णु भगवान खड़े हैं, उसके चारों ओर ऐसे जलाशय हैं, एक जलाशय को उन्होंने बनवाया है, क्योंकि तो कितना बनाएंगे बड़ा, वो भी कितना विशाल बनाया है, अच्छे घाट वाट बनाए हैं, लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे ना, चारों तरफ वो तालाब है, तालाब ही तालाब है, वो सारा क्षीर सागर था। कलयुग में सब सिकुड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कुसुम सरोवर भी कितना विशाल था, अभी वो कलयुग में उसको जोड़कर बनाया गया है। आपने ऐठा कदम देखा क्या, ऐठा कदम नहीं शायद, सॉरी माफी चाहता हूं, मैं नहीं आया आपके साथ। उसी गांव में एक जगह है, वहां पर भी तालाब है, वो तालाब भी क्षीर सागर कुंड है, उसी गांव में थोड़ा सा दूर से यहां से वहां तक बड़ा विशाल जलाशय है, और आप अगर गौर से ऊपर से देखेंगे तो सारे ऐसे लाइन में है जो मेन क्षीर सागर की तरफ मुड़ते हैं, और उसके मंदिर के पीछे भी क्षीर सागर दूर दूर तक। तो वहां पर एक और लीला भी हुई है, 2-3 लीलाएं हुई है। एक लीला क्या हुई कि भगवान ने, जब इंद्र ने वर्षा किया, बहुत धुआंधार वर्षा किया, तो अभी इन्होंने कहा था ना, इनकी पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करो, यानी इंद्र की दृष्टि से मैं देवेंद्र देवताओं का राजा की पूजा को छोड़कर एक पत्थर की पूजा करने को बोल रहे हैं, इतने उदंड हो गए ये ब्रिजवासी, मैं वर्षा देता हूँ, उससे घास आती है, उस पर गाय चरती है, उससे दूध निकलता है, इससे ये धनवान हो रहे हैं, और इतने उद्दंड है कि मेरी पूजा रद्द कर रहे हैं जो हर साल कर रहे हैं। अरे रद्द कर रहे हैं तो एक बालक के कहने से, एक 7 साल का नटखट उद्दंड बालक के वक्तव्य से ये बड़े बड़े बुजुर्ग दाढ़े वाले गोपाल सब भाग गए। अभी सबको दिखाता हूं मैं, प्रलयंकारी बादल जो है प्रलय के समय उसका उपयोग होता है, बाकी हम रेस्ट करते हूँ, एक ही समय ड्यूटी होता है उनका। ला जाओ जाके उधर ब्रज में बरसो, नष्ट कर दो सबको। वो स्वयं बोल रहे महाराज समय तो प्रलय का नहीं है, आप हमको ऑफ टाइम बुला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जाओ बरसो, आप मेरे सेवक हो जाके बरसो। तो भयंकर वर्षा शुरू हुई, उसका भागवत में वर्णन दिया है। सब गाय अपने चार पाँव के बीच में बछड़ों को लेकर खड़े बचाने के लिए, कहाँ कहाँ बचाएंगे, बछड़े बह जा रहे हैं, झोपड़ियाँ बह जा रही हैं, घर बह रहे हैं, जानवर बह रहे हैं, सब हिरन बह रहे हैं, सब बह रहे हैं, अंधकार है, उसमें बिजली कड़क रही है, मूसलधार वर्षा गिर रही है। तो कृष्ण भगवान को ही पुकार रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे बलराम, कृष्ण कृष्ण महाभाव बचाओ हमें। आप लोग हम लोग होते ना तो क्या बोलते, अरे जिसके वजह से ये हो रहा है उसको बुला के क्या फायदा है, जिसके कारण ही सब कुछ हुआ है वही कारण है इसका। लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा उन पर ही है, उनको ही पुकारते हैं। और कृष्ण उनको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, आप होते हम लोग होते बोलते अभी कहाँ ले जा रहे हो, इतना सब हाहाकार मचा दिया अभी कहाँ ले जाओगे आप, नहीं चुपचाप गए। नंद बाबा भी सब उसके पीछे गए और उनको वो पेठा गाँव लेके गए। पेठा गाँव लेके गए तो अभी ग्वाल बाल को भी जरा उत्सुकता है, अरे कन्हैया क्या करोगे, तो कहते कि मैं गिरिराज को उठाऊंगा, तुम्हारी बेटी है ना आराधिता, वो अगर खेल खेल में बोले कि मम्मी मैं ना वो पर्वत को उठाऊंगी, हम जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं ना वो बिल्डिंग को मैं उठा लूँगी, तो आप लोग क्या करेंगे, खाली हंसेंगे पेट पकड़ के, है ना, कोई मेरा मेरी छोटी सी बिल्डिंग की लड़की आके बोलेगी भक्ति विदान हॉस्पिटल को मैं उठा लूँगी, तो आप लोग सब हंसेंगे ना, अभी अभी हंस रहे हैं, कुछ लोग नहीं हंस रहे शायद सोते होंगे लेकिन हंस रहे हैं मेनली। तो वो बाल बाल बोलते हैं कि हम कैसे माने कि आप इसको उठाएंगे, अरे मैं इसको उठाऊंगा, छतरी बनाऊंगा, आप सबको उसके अंदर लूंगा, इंद्र की वर्षा का परिणाम नहीं होगा। बोले कैसे करोगे, लेकिन आप कुछ तो बताओ कि आप हमें विश्वास हो जाए। तो ठाकुर जी ने वहाँ से एक विशाल पेड़ था कदम का, उसको ना ऐसा उखाड़ दिया, नंबर वन, बालक उखाड़ सकता है क्या कोई पेड़ इतना बड़ा, अभी भी इतना बड़ा है वो, कितना सिकुड़ के अभी हो गया, पहले कितना बड़ा होगा, उसको उखाड़ा एकदम सहजता से उठा, जैसे ऐसे वर्णन करते शास्त्र में सुखदेव जी कि जमीन से जब भूछत्र होता है ना, भूछत्र क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मशरूम उसको कहते हैं ना, वो कुतराची छतरी अपन बोलते लानस्ताना, हाँ ऐसे छतरी जैसा रहता है वो, जैसे वो उखाड़ता है बच्चा ना, वैसे भगवान ने वो पेड़ को उखाड़ा। सब देखते रहे घरे, और वो तो ठीक है, उसके बाद में उस पेड़ को ना जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ दिया उन्होंने, जो उससे भी कठिन काम था। और सब देख रहे हैं कि नजरों के सामने पेड़ को उखाड़ कर उसको निचोड़ दिया, पूरा पूरा ऐसा कर दिया उसको ट्विस्ट। तब ग्वाल वालों को विश्वास हो गया करेगा, तो पेड़ को वहीं रख दिया, वो पेड़ अभी भी वहां पर है, ऐठा कदम बोलते हैं उसको यहाँ की भाषा में, ऐठना यानी मरोड़ना नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, पिलने ट्विस्ट करना निचोड़ना पूरा, अभी भी वहाँ पर है वो, अभी उसको वार्निश करके कांच के पेटी में रखा है, जाकर देख सकते हैं कैसे भगवान ने लीला किया है, सब आपके सामने है। ऐसा कोई पेड़ विश्व में नहीं है जो ऐसा निचोड़ा हुआ स्थिति में है। वर्षा हो रही क्या, जय हो जय हो, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए। अभी थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। आपने अगर गर्म कपड़े पैक कर दिए होंगे दोबारा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो नारद कुंड में बहुत ठंड पड़ेगी आपको कल। तो उसके बाद भगवान ने क्या किया, एक वहाँ पर स्थान है ऐठा कदम, फिर उसके बाद में भगवान ने क्या किया, उसके बाद भगवान वो जो चतुर्भुज नारायण का विग्रह जहाँ पर है ना, आप वहाँ गए थे, ये विग्रह ऐसे ना देखो ऐसे विग्रह है, उसका फोटो वीटो कुछ अलाउड नहीं है, बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत विशाल बहुत ऊंचे, ये जहाँ पर है ना उनके राइट साइड में आपने देखा नहीं होगा एक बड़ी दीवार लगा के रखी है, वहाँ पर एक गुफा थी, गुफा उसका नाम है प्रविष्ट गुफा, उस गुफा का दर्शन हमने किया है, लेकिन सुरक्षा के कारण फिर गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। ऐसे कई गुफाएं हमने देखी है जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि उसमें कई बच्चे गए वापस लौट के नहीं आए। ऐसी गुफा उत्तरकाशी में भी है, जो सुरंग में से पांडव लोग निकले थे ना, विदुर के वो सब कूट नीति क्या कहते हैं उसको, कोड लैंग्वेज में जो बताया गया था, फिर सुरंग बनाया, वहाँ से सब पाँचों भाई आए एक जगह पे, उत्तरकाशी में बाहर निकले, एक तरह से गुफा ही थी वो सुरंग, बाहर निकले तो वहाँ से विदुर ने बोट का व्यवस्था किया था, बोट में गंगा जी में बैठ के चले गए। उधर भी गुफा थी लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर गायब हो गए, तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, वहाँ पर शिवलिंग स्थापन कर दिया। क्या नाम दिया उसका? लक्षेश्वर महादेव, क्योंकि लाक्षाग्रह से वो आए थे वहाँ पर, और शंकर जी का नाम दिया लक्षेश्वर महादेव। ऐसी कई गुफाएं हमने देखी है जो अभी बंद हो गई है। तो वो गुफा जहाँ पर है या अभी बंद कर दी है जो दीवाल है, वहाँ तक गोवर्धन पर्वत था। मुझे कई लोग पूछते हैं कि प्रविष्ट गुफा में भगवान ने प्रवेश किया, इसलिए उसका नाम पड़ा प्रविष्ट गुफा। और पेठा गांव का और एक नाम है प्रविष्ट वन, जिसको अभी पेठा कहते हैं, लेकिन उसका नाम प्रविष्ट वन है। क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें प्रविष्ट गुफा है जिसमें भगवान ने प्रवेश किया। जमीन के नीचे जाकर भगवान ने बायां हाथ से उसको पहले तलुवे पे उठाया, फिर उसको छोटी उंगली में लिया, फिर तिल तिल ढसके आज वो पर्वत कहाँ चला गया देखा आपने? दूर दिखाई पड़ता है, बहुत दूर। वैसे ही राघव पंडित की गुफा भी गोवर्धन पर्वत के अंदर थी, लेकिन अभी तिल तिल ढसने की वजह से अभी दूर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे तरह से प्रविष्ट गुफा भी उसी गांव में है जहाँ से जाकर भगवान ने गिरिराज को उठाया। और क्या कथा बाकी रह गई आपकी? चंद्र सरोवर में आपने गौशाला देखा, वो गौशाला के अंदर बाजनी शिला है। फिर चंद्र सरोवर पे सूरदास जी का निवास स्थान है, सूरकुटी कहते हैं, आपने देखा उसको? नहीं देखा, उसके बाजू में है वो। तो सूरदास जी जो है उन्होंने 77 साल तक वहाँ पर निवास किया है, 77 ईयर्स। अपने सारे जो सूरदास के रूप में जो लिखा है उन्होंने, वो सब कुछ वहाँ पर लिखा है। अंधे थे वो, और उनका उनको एक पदवी थी सागर, कभी भी उनको पुकारते सूर सागर कहते हैं, क्योंकि वो सर्व गुणों के सागर थे। अष्ट छाप में से एक सर्वश्रेष्ठ जो सखा थे भगवान के, वो सूरदास जी हैं। और सूरदास के कई चमत्कार हैं। हमने राधा कुंड में एक स्थान मिस किया, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा का मंदिर, राधा गोविंद के मंदिर के पास में है वो, सब इसमें गर्दी में मिस हो गए वो। वो सूरदास जी अंधे थे जन्म से, नहीं पहले था उनका दृष्टि, बट बचपन में चली गई। फिर संत बन गए तो उनको सदैव ठाकुर जी के दर्शन हुआ करते थे। जिस भी मंदिर में जाते उसके श्रृंगार का पूरा वर्णन करते, अंतः चक्षु से उनका सदैव दर्शन करते वो, इतने सिद्ध महात्मा थे वो। और ठाकुर जी ने उनको कहा भी कि मैं आपको नेत्र दे सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नेत्र देंगे तो दुनिया देखूँगा, अभी वैसे भी आपको देख रहा हूँ, और देखने लायक है क्या? जो देखना चाहिए वो तो देख ही रहा हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए दृष्टि आपकी। देखिए क्या चेतना है, हमको अगर भगवान दिख भी रहे अंतःचक्षु से, फिर भी हम दुनिया को देखना चाहेंगे। बोले देखो क्या है दुनिया में, चमत्कार क्या, भूल भुलैया देखें जरा, लेकिन साफ मना कर दिया उन्होंने। तो वो एक बार उस जगन्नाथ के मंदिर में आए थे, और सब लोगों को पता था कि इनको दर्शन होता है, तो ब्रजवासी है ना एकदम लाइट मूड में रहते हैं, तो उनको लगा कि सूरदास का थोड़ा हास प्रयास करें। अरे महाराज जी जगन्नाथ का वर्णन करो, क्या पहना है, कैसे पहना है, क्या अलंकार पहने। तो जगन्नाथ ने शुरू कर दिया बताना, क्योंकि उन्होंने आते ही पर्दा बंद कर दिया, बोले पर्दा नहीं खोलेंगे, अभी दर्शन का वर्णन करो पहले, फिर पर्दा खोलेंगे। तो उन्होंने बताया, बोला अभी खोलो, अभी भी नहीं खोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने भी एक स्टेप आगे चले गए वो, और कृष्ण के ऊपर थोड़े ताने और विनोद करना शुरू किया। पहले तो दर्शन का वर्णन किया, फिर कृष्ण को ऐसे एक सखा के रूप में एड्रेस करना शुरू किया। ऐसे करते करते उनका स्थिति जो है ना, उनको जो जो उनके पद वो बोल रहे हैं, उसका लेवल जो है ना वो चेंज होते जा रहा है, रस उसका बदलते जा रहा है। और अभी भी नहीं खोल रहे, तो उन्होंने बोला अरे ये तो बूढ़े बाप का बेटा है, ये बुढ़ापे में पता नहीं बाबा को क्या हुआ और करने तुरंत पर्दा खोल दिया, बस 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 आगे मत जाओ। ये लीला वहां पर हुई है राधा कुंड पे सूरदास जी की। सूरदास जी एक बार चित्रकूट गए थे क्योंकि तुलसीदास जी उनके परम सखा मित्र हैं और तुलसीदास जी भी यहाँ पर आए हैं। तो तुलसीदास जी उनको जब मिलने आए थे तब तुलसीदास जी तो राम भक्त हैं, सूरदास जी कृष्ण भक्त हैं, तो वैसे सखा है, दोनों वैष्णव है लेकिन दोनों के इष्ट अलग अलग हैं। तो तुलसीदास जी उनको बता रहे हैं कहाँ पर चंद्र सरोवर के निवास स्थान में वहाँ पर रहे हैं वो, तुलसीदास जी ने वहाँ पर निवास किया है सूरदास जी के साथ। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत ना खतरा लग रहा है, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ डेंजर ओवर हियर। बोले क्या डेंजर क्या है? कहते मैं राम जी को भूल रहा हूँ और कृष्ण ही मेरे हृदय में आ रहे हैं, मेरे मुँह से भी राम के बदले में कृष्ण ही आ रहा है। बोले बहुत खतरनाक जगह है, इस चीटिंग में ओवर दिस प्लेस इज चीटिंग में, ये जगह मुझे फंसा रही है, छद्म कर रही है मेरे साथ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, ऐसे प्रेम से बोल रहे हैं। तो तुलसीदास जी जब आए ना यहाँ पर तो उनको उनके मन में आया कि अगर यहाँ का ठाकुर भगवान है कृष्ण तो वो मेरे भगवान का रूप उनको दिखाना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि यही भगवान है ठाकुर है। तो वृंदावन में एक जगह है तुलसी आश्रम, वहाँ पर कृष्ण भगवान ने हरे रंग का रूप धारण करके धनुष धारण करके उनको दर्शन दिया है। तब तुलसीदास जी को विश्वास हुआ कि ये मेरे ठाकुर है, जहाँ यहाँ के ठाकुर जी है वो मेरे ठाकुर भी है। आज भी वृंदावन में वो आश्रम है जहाँ पर वो विग्रह है, जहाँ पर हरे रंग के राम जी धनुष लेके खड़े हैं जो तुलसीदास को दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने निवास किया, जब कृष्ण का साक्षात्कार उनको हुआ कि वे राम और वो एक ही हैं, तो उन्होंने सूरदास के साथ निवास किया और कृष्ण गीतावली ये ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने 88 पद लिखे हैं कि माता कृष्ण को दूध पिला रही है, माता कृष्ण को डांट रही है, कृष्ण भाग के माखन चोरी कर रहे हैं, इस प्रकार के सारी लीलाओं का दर्शन उनको ब्रज में हुआ। लिखा कृष्ण गीतावली 88 पद है, बहुत सुंदर सुंदर सब दर्शन उनको हुए, उन्होंने कोई सुन के पढ़कर लिखा नहीं, उनको सारे दर्शन ब्रज में हुए। और जब सूरदास जी वहाँ गए कहाँ पर चित्रकूट, तो सूरदास जी ने तुलसीदास को कहा, वो तो कामतगिरी नाम का पर्वत है वहाँ पर सूरदास जी का निवास स्थान है, वहाँ पर उनको रुकाया उन्होंने, कामतगिरी तो गिरिराज से अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ पर छद्म हो रहा है, मुझे यहाँ कृष्ण की जगह पर राम ही याद रहे, राम ही दिख रहे सब जगह पर, मेरे साथ छल किया जा रहा है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मैं जाऊँगा यहाँ से। तो प्रभु ने उनको दर्शन दिया कृष्ण के रूप में, प्रभु रामचंद्र ने। तो उन्होंने सूर रामायण लिखा चित्रकूट में रहकर, ऐसी इनकी लीला है, अद्भुत लीला। इनके निमंत्रण पर ये वहाँ गए, उनके निमंत्रण पर ये यहाँ पर आए। तो सूरदास जी ने वहाँ पर अपना शरीर भी त्यागा हुआ है, उनकी समाधि भी वहाँ पर है, भजन कुटी भी है और समाधि भी है। सूरदास जी बहुत महान संत हुए हैं, बहुत महान संत हुए भारत के इतिहास में। अगर आप सूरदास जी को नहीं याद करेंगे तो भारत का इतिहास हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए अधूरा है। भारतीय संतों के सारी लिस्ट में प्रमुख नाम है सूरदास जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कौन सी कहानी बची? यस अभिराम प्रभु, और कौन सा बचा? हाँ क्या किलोड़ कुंड, मुझे खुद स्वयं पता नहीं है, मैं भी एक बुक खरीद रहा हूँ उसमें वो है, लेकिन पढ़ा था मैंने, भूल गया, मैं उसका खोज कर रहे हैं उस किताब का। कोई बात नहीं, एक गिरिराज महाराज की, जो गिरिराज भगवान गिरिराज गोवर्धन की महिमा की कथा है एक, जो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। कहाँ गए रामचरित प्रभु? रामचरित प्रभु कहाँ है? कोई ग्रंथ लेकर आए थे मेरे लिए, किधर गए वो? चलो कोई बात नहीं। तो एक भयंकर राक्षस था, उसके पहले एक बताता हूँ कि एक भगवान का ब्राह्मण भक्त था, वो कहीं गया था तो वहाँ से अपने गांव लौट रहा था। तो पुराने ज़माने में तो सब जगह पैदल जाते थे, कहीं से भी जाओ पैदल जाओ, बीच में पेड़ के यहाँ विश्राम करो, कहीं फल फूल खाओ और आगे चलते रहो। तो इसका आने का रास्ता था ना वो गिरिराज गोवर्धन ब्रज से आया, वो ब्रज से गुजर रहा था और पहुँचते मतलब बीच चलते चलते अंधेरा हो गया और वो गोवर्धन में आ गया, वो ब्राह्मण। जब गोवर्धन में पहुँचा तो एक भयंकर राक्षस भी, उसका वर्णन उस गर्ग संहिता में दिया है, विशेष डिटेल में दिया है। इतना भयंकर था वो कि उसके कई हाथ कई पैर कई सर थे उसके, और विचित्र जगह पर थे, भयंकर दिखने में, देख के ही डर जाएगा आदमी, इतना भयंकर शरीर था उसका। तो अभी वो आया, वो भूख प्यास से तड़प रहा था क्योंकि उसको शाप था कि वो जहाँ भी रहेगा उसको पानी और भोजन नहीं मिलेगा, तो वो तड़प रहा था पूरा। जैसे ही ब्राह्मण को देखा अकेला, तो उस पर टूटने के लिए आया, टूट पड़ने के लिए। ब्राह्मण मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे खाने वाला हूँ, बहुत दिन से प्यासा और भूखा हूँ, इस घने जंगल में कोई नहीं आता है, तुम ही आए हो धाड़स करके, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। तो वो डर गया, अभी एकदम डेस्परेट हो गया, मरना ही है। उसने क्या किया, एक गोवर्धन की शिला उठाई और उसको फेंक के मारी। जैसे ही वो शिला का स्पर्श उस राक्षस को हुआ, एकदम तुरंत देवता के रूप में उसका रूपांतर हो गया, एकदम देवता बन गया वो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया, मैं तो सुरक्षा के लिए मारा था, लेकिन पत्थर लगते ही वो तो रूपांतर हो गया उसका। तो उसने पूछा कि आप कौन हो, तो उसकी एक लंबी कहानी है, तो मुझे अभी डिटेल में याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें ना कई कई करोड़ों 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 युगों का वर्णन है कि उसने, देवता ने एक बार किसी ब्राह्मण का अपराध किया था, उसके वजह से उसको इतने शाप मिले कि वो करोड़ों युग तक कहाँ कहाँ किसी शेर के रूप में, गधे के रूप में, मछली के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, करते 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 आखिर ये रूप में उसका जन्म हुआ था। ये जन्म होने के पहले कई करोड़ों युग तक उसने यातना सहन की थी शाप के कारण, और गोवर्धन शिला के स्पर्श मात्र से उसने मुक्ति प्राप्त कर ली और सीधे भगवत धाम चला गया। तो गोवर्धन का महात्म्य ऐसा है कि गोवर्धन शिला को स्पर्श करते ही सारे अनंत जन्मों के इतिहास में जो पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। मुझे आशा है कि आपने कई शिलाओं को स्पर्श किया होगा। आज मैं चला नहीं, लेकिन जब मैं उद्धव कुंड में गया तो आपने देखा ना, मैं बहुत शिलाओं को स्पर्श कर रहा था, कारण उसका यही है। उसमें भी राधा कृष्ण के दर्शन हुए, कुछ लोगों को दिखाया मैंने। तो ये गिरिराज का महात्म्य है, गिरिराज के पास आना, परिक्रमा कर पाना किसी भी रूप में, गिरिराज की महिमा सुनना, गिरिराज के रज में स्पर्श होना, दर्शन होना, ये सब परम भक्ति के लाभ करने की प्रक्रिया है। गिरिराज जी जिस पर प्रसन्न होते हैं वो कृष्ण भक्ति देते हैं, प्रेमा भक्ति देते हैं, प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले हों। और कृष्ण के लीलाओं में जो भी चाहिए, कुछ भी आप डिमांड कर सकते हो, वो गिरिराज जी तुरंत प्रस्तुत करते हैं भगवान के आनंद के लिए। और गिरिराज जी की विशेषता है, सब भक्त अपने अपने ग्रुप के होते हैं, ग्वाल बाल होते हैं वो खाली साक्ष्य लीला में होते हैं, वो गौचारण करते रहते हैं, माता पिता जो है वो वात्सल्य में रहते हैं, गोपियाँ नृत्य करती रहती हैं, उनकी अपनी माधुरी लीला चलती रहती है। लेकिन गिरिराज जी पाँचों लीलाओं के साक्षी हैं, पांचों प्रकार की लीलाएं गिरिराज के तलेटी में होती है, और बैकग्राउंड में रहकर सब लीलाओं को सपोर्ट करते हैं, जो चाहिए वो देते हैं उनको, और पीछे रहते हैं और देखते रहते हैं। हमारा भी यही भाव होना चाहिए। हम सब लोग देखो, एक संत ने कहा है कि तीन प्रकार की बीमारियां हैं जो हमको यहाँ पर बांध के रखती है, ध्यान से सुनना, अभी मैंने दो तीन दिन पहले पढ़ा था, तीन बीमारियां हैं जो हमारे इस विश्व में बंधन का कारण है। नहीं आपको नहीं, जिसको समझ में आया वो समझ गया, आप चिंता मत करना, ताली बजते ही जिसकी आँख खुली उसको समझ में आया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तीन हमारे रोग है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हमेशा बद्ध रहते हैं। कौन से रोग है वो, जो हम करते हैं उसका श्रेय लेना, जो कर रहे हैं उसका डूअर करता मैं हूँ, जो नहीं कर रहे हैं उसका भी श्रेय लेना, और जो दूसरा कर रहे हैं उसका श्रेय लेना। देखो करते कि ना हम लोग, समझो कोई ग्रुप का लीडर है, हाँ, जब कोई ग्रुप का लीडर है, उसको डिपार्टमेंट को कुछ काम दिया जाता है और वो ग्रुप उसको यशस्वी तरीके से करता है, तो उसका श्रेय लेने के लिए HOD जाता है कि हमारे निर्देश में सब कुछ हुआ, सारे गिफ्ट हार तुरे सब वो HOD लेता है। और जब वो फेल हो जाता है तो वो कहता है देखो इसके वजह से हुआ, इसके नहीं, मैंने बोला था सबको ये सब इतनी योजना बनाई थी लेकिन ये लोग ने सहयोग नहीं दिया। तो श्रेय लेने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो करते हैं, जो हमने ही किया है, सत्य में हमने किया है, लेकिन उसका श्रेय लेते हैं, क्योंकि अज्ञान क्या है कि करने वाला मैं हूँ, ये अज्ञान है, ये जानते नहीं कि कर्ता भगवान है। और जो नहीं किया है उसका भी श्रेय लेते हैं, और जो दूसरा कर रहे हैं उसका भी श्रेय लेते हैं। ये तीन चीज़ के कारण हम लोग यहाँ पर बद्ध अवस्था में है दुनिया में। जब हमने किए हुए कार्य को भगवान को श्रेय देंगे या वैष्णवों को श्रेय देंगे तो पहले वाले से मुक्त हो जाएंगे। जो हमने नहीं किया है उसका श्रेय नहीं लेंगे, और जिसने किया उसको देंगे तो भी हम मुक्त हो जाएंगे, और दूसरों ने किया हुआ कार्य का श्रेय उनको ही देंगे। ये बहुत कठिन है। वो जो है ना लोभ, वो रे मैं बता सकता हूँ कि मैंने किया है, मेरे अधिकार में है, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये बात कहाँ से निकली थी? नहीं, वो ये तीन बात कहाँ से निकली थी? गोवर्धन के ऊपर। गोवर्धन इतना सारा कार्य करते हैं लेकिन सारा श्रेय दूसरों को देते हैं, सारा श्रेय दूसरों को देते हैं। स्वयं सब कुछ महान 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 सेवा कृष्ण की करने के पश्चात भी सब श्रेय सब सखियों को, सखाओं को, सब ग्वाल वालों को देते हैं। उनके जमीन से जो घास निकलती है वो घास को कमल की सुगंध आती है, लेकिन जब वो घास खाने से गायें दूध देती है जिसको कमल की खुशबू आती है, तो गोवर्धन जी उसका श्रेय गोपियों को देते हैं। गोपियाँ कितनी प्रेम से गाय को रखती हैं, इसके वजह से उनकी गायों को दूध को कमल की सुगंध आती है, कितनी प्रेम से उसका मंथन करती है, इसलिए उनके माखन को भी कमल की खुशबू आती है। लेकिन उसका उगम उस घास में है जो गिरिराज ने निर्माण किया है, और निर्माण करते रहते हैं, और वहीं पर गैया चराती है यशोदा मैया, सौ पद्मगंधा गायों को निर्माण करके रखा है उन्होंने। ऐसे मैंने आपको एक ही उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे, बहुत गुफाएं बना के रखी है, रत्न बना के रखे हैं, जड़ी बूटियां बना के रखी है, तालाब बना के रखे हैं, झरने क्या नहीं बनाया है, कृष्ण के आनंद के लिए प्रकट करते रहते हैं बस सब कुछ। क्योंकि सारा श्रेय जो है किसी और को देते हैं, यही गिरिराज्य का महात्म्य है, यही महिमा है, और हमको भी यही सीखना है। ये सब छोड़ दो और गिरिराज जी का अनुकरण करो, नकल मत करो, प्रयास करो, उनके पद चिन्ह पर चलना है। स्वयं कृष्ण भी है फिर भी स्वयं को दास मानते हैं, हरिदास वर्य। अरे गोपियाँ जो सब जगह पर उनकी कीर्ति है, ये सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। पूरे विश्व में, ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में गोपियों का स्थान जो है वो सर्वोच्च है, ये सब संत लोग मानते हैं। सब महान महान संतों की दृष्टि से गोपियाँ सर्वोच्च हैं। चैतन्य महाप्रभु भी गोपियों का सन्यासी होकर भी नाम लेते थे, लोग जूते लेकर उनके मारने के लिए डरते थे, तो सन्यासी होकर स्त्रियों के नाम लेते, ललिता, विशाखा, राधे, ऐसे सन्यासी तो जो औरतों के जूतों को भी देखते नहीं, जो पहने हुए नहीं है, दूर है रखे हुए, उसको भी देखते नहीं, और वे गोपियों का नाम लेते थे, नाम का जप करते थे बैठ कर एकांत में। और वो गोपियां कह रही है हरिदास वर्य, ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये सब हरिदासों में, हरिदासियों में श्रेष्ठ है। कौन कह रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, कोई लुच्चा लफंगा नहीं कह रहा है। तो अभी दुनिया में सब लोग ऐसे ही होते हैं, लुच्चे लफंगे षड्यंत्र बनाते हैं, और किसी को बनाते तू महाराज बन जा, हम तुम्हारी प्रसिद्धि कर देते हैं, सोशल नेटवर्किंग, और कुछ दिन के बाद में वो बहुत करोड़ोंपति भगवान बन जाता है। सब लोगों को ऐसे बताते, पैसे लो और बताओ सबको ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसे 50-100 हज़ार लोग बोलने लगेंगे पैसे देकर, तो लोगों को लगेगा, गरीबों को लगेगा, बेचारे सिंपल लोगों को लगेगा कि भगवान है, सब जाएंगे और कुछ ट्रिक करके ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, लोगों की ऐसी बढ़ाएंगे श्रद्धा, फिर भी लोग भूल जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो समझते हैं कि ये सब झूठ मूठ है। लेकिन यहां पर सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है गोपियां, वो ये भागवत में खुले दिल से कह रही है कि गोवर्धन जी हरिदास वर्य है, ये इनकी मानता है। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन की। श्री गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना अनुग्रह हमें दे, कृपा करें, अपनी छत्र छाया में रखें। उनकी तलेटी में आने के लिए सब संत लोग व्याकुल रहते हैं। उन्होंने हमको कितनी रात, चार रात तो दिया ना निवास, 17, 18, 19 और 20, चार रात का निवास दिया उन्होंने। देखो यहीं की हवा, यहीं का जल हमने पिया, इतना बड़ा भाग्य है ये। बार बार हमें बुलाएं, हमको सेवा दें, उनकी परिक्रमा कर पाएं और अच्छा भाव दें, निरपेक्ष निष्प्रोह भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति दें, प्रेरणा दें। ये हम सब गिरिराज को प्रार्थना करते हैं और हमारी वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।